अच्छ पुनः धर्म वृषम, धर्म वृषम श्रेय बन्यते श्रद्धाति। धर्म को वृष यानी धर्म वही हो गया, उसको कल्याणकारी मानता है, श्रद्धान करता है। कथम भूतम धर्म, कैसे धर्म को कल्याणकारी मानता है? सर्व जीवानाम दया परम, सब जीवों के प्रति दया में जो तत्पर है। सर्वेशाम जीवानाम प्राणिनाम, सब जीवों के प्रति, सब प्राणियों के प्रति, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति, त्रस कायिकानाम छह कायों वाले जीवों के शरीराणाम, मनो वचन काय कृत कार्यतानुमत प्रकारेण दया परम कृपोत्कृष्टम, उससे दया में तत्पर और कृपा से उत्कृष्ट है। ऐसे धर्म पर श्रद्धाती है जो श्रद्धान रखता है। तथा और भी कहा है कि धम्मो वत्थु साहो खमादि भाव या दसवे हो धम्मो रहणत्यंच धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो इति धर्म मनुते, ऐसे धर्म को मानता है, जानता है। धर्म वस्तु का स्वभाव, क्षमादिक भावों को भी 10 प्रकार का धर्म कहा जाता है। रत्नत्रय भी धर्म है और जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। यो गुरुम मन्यते, गुरु किसको मानता है? कीदृशम गुरु, कैसे गुरु? तो बोले वर्जित ग्रंथम, परिग्रह से रहित गुरु, परित्यक्त बाह्याभ्यंतर चतुर्विंशति संख्योपेत परिग्रह, छूट गया है बाह्य और आभ्यंतर 24 प्रकार का परिग्रह जिनका। केते बाह्य आभ्यंतर ग्रंथा इति चेत उच्यते, वो कौन से 24 है बाह्य और आभ्यंतर? तो कहते हैं क्षेत्रम वास्तु धनम धान्यम द्विपदम चतुष्पदम यानम शय्यासनम भाण्डम कुप्यंचेति बहिर्दशम। क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपद चतुष्पद यान शय्यासन भाण्ड और कुप्य, ऐसे 10 परिग्रह बाहर के परिग्रह। अब इसमें कोई अर्थ आपको समझ में ना आ रहा हो तो देख लो, क्षेत्र यानी जमीन है, वास्तु यानी मकान दुकान वगैरह है, और धन यानी धन है, और धान्य यानी अनाज है, द्विपद यानी दो पैरों वाले नौकर चाकर हैं, चतुष्पद यानी जानवर है, यान यानी वाहन वगैरह, और शय्यासन यानी पलंग और कुर्सियां, और भांड यानी बर्तन, और कुप्य यानी जो डेकोरेशन के सामान होता है घर में सजावट के, और कपड़े अपने वो कुप्य हैं। हाँ धन में रहेगा। फिर अंतरंग 14 कौन से? मिथ्यात्व वेद हास्यादि षट कषाय चतुष्टयम राग द्वेष उच्च संगाहस्य रंतरंगाश्च चतुर्दश। मिथ्यात्व, फिर वेद, वेद एक जीवन में एक रहता है तो कितने हो गए? मिथ्यात्व और वेद 2। फिर हास्यादि षट, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये 6 हो गए, तो 6 और 2 8। फिर 4 कषाय हो गई, क्रोधमान माया लोग, 8 और 4 12। फिर राग द्वेष, ये और 2 ले लो, ऐसे 14 परिग्रह अंदर के होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि मूर्छा को परिग्रह कहा है, फिर इन भावों को कैसे परिग्रह कह सकते हो? तो मेरा क्रोध, मेरा मान रखना पड़ेगा, मेरा गुस्सा तुम जानते नहीं हो, अरे मैं ऐसी चालाकी करूंगा तो कोई समझ ही नहीं सकता, और मेरी तो बड़ी इच्छा होती है ऐसा करना वैसा करना, लोग ये सब मेरा मेरा जो लग गया ना, तो वो अपने कषाय के प्रति मूर्छा आ गई, ममत्व है मेरी कषाय, इसलिए वही भी परिग्रह। मेरी हंसी, मेरा रोना, ये सब बातें आ जाती पूरे अपने परिग्रह में। कोसो मिथ्या दृष्टि थी जी, नहीं वो कुछ नहीं, वो आप सब सुन लो बस चुपचाप, जो लिखा है सो लिखा है बस, वो तो भेद समझ, वो तो मालूम हो गया ना, 4 कषाय में ही राग द्वेष हो जाते वैसे। नहीं नहीं, क्या है कि वेद एक ही रहता है जीवन में, इसलिए उसको चेंज नहीं कर सकते। 3 वेद अपन एक जन्म में नहीं गिन सकते, वेद एक ही अलग है। मिथ्या दृष्टि कौन है? तो जो दोष सहित देव को भी देव मानता है, और हिंसादिक से संयुक्त धर्म को भी धर्म मानता है, और ग्रंथों में आसक्त को भी गुरु मानता है, परिग्रहों में आसक्त को, वो कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है। क्षुधा तृषा राग द्वेष भय मोहादि लक्षण ही सहितम संयुक्तम देवम। तो केवलिनाम क्षुधादिकम शंख चक्र गदा लक्ष्मा संयुक्तम। अब केवली भगवान के पास भूख प्यास होती है और शंख चक्र गदा और लक्ष्मी से संयुक्त हरि त्रिशूल आदि से युक्त पार्वती और गंगादिक से मंडित हर और सावित्री गायत्री आदि से मंडित ब्रह्मा, अच्छा सावित्री और गायत्री से मंडित ब्रह्मा इत्यादिकम देवम यह मनुते, इत्यादि को देव मानते हैं जो, ये माने उस स्वरूप सहित अगर मानते हैं देव। अब इनकी कोई अलग पर्याय हो, जैसे श्री कृष्ण जी भविष्य के 16वें तीर्थंकर निर्मलनाथ भगवान है, तो वहां पर उस पर्याय में वो पूरे 18 दोषों से रहित है, तो उन 18 दोषों से रहित अवस्था में आप देव मानो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दोष युक्त को देव मानो तो मिथ्या दृष्टि। कभी सात्य के पुत्र जो शंकर जी थे, ये भी भावी तीर्थंकर है, कृष्ण भी भावी तीर्थंकर है, नारायण सब मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि होता है। क्या नहीं, अपन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कल्याण मंदिर में एक श्लोक निकला था कि वो हे भगवान आपको ही इन्होंने ऐसा मान लिया है, उस रूप में रूप बदल करके मान लिया, मतलब मूल में तो आप ही थे भगवान, लेकिन उन्होंने रूप बदल करके मान लिया, क्योंकि जिनके आंखों पर मिथ्यात्व का चश्मा होता है, रंगीन चश्मा, तो उसको सफेद चीज सफेद नहीं दिखती, तुमने आप में ये सब दोषों की कल्पना करके भगवान बना करके अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बकरी है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है, और ऐसे और बहुत सारे ऐसे हिंसक जो अनुष्ठान है जिनको बलि चढ़ा करके या फिर यज्ञ में होम कर देवी देवता की खुशी के लिए, अपने माता पिता जो परलोक चले गए हैं उनकी तृप्ति के लिए, चेतन और अचेतन जीवों की जो विराधना रूप धर्म है, और अपने देव गुरु और धर्म आदि के लिए सैन्यादि चूर्णम धर्मम, सेना आदि किसी दूसरे की सेना आदि का चकचूर कर डालना, नष्ट कर डालना, वो भी धर्म है। ऐसे जीव हिंसा से युक्त और झूठ चोरी ब्रह्मचर्य खंडन और परिग्रह आदि का इकट्ठा करना आदि आदि सहित धर्म को जो स्वीकार कर लेते हैं, श्रद्धान कर लेते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। चपुन और कहते हैं कि ग्रंथासक्त गुरु को क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपद स्त्री आदि और परिग्रहों से सहित गुरु को, दिगंबर गुरु के सिवाय अन्य गुरु को जो अंगीकार करते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब कोई कहते हैं कि हरिहर आदि जो है देव, वो हमें लक्ष्मी प्रदान करते हैं, हमारा उपकार करते हैं, तो वो बात भी अवास्तविक है, ऐसा बतलाते हैं कि कोई भी किसी को लक्ष्मी आदि नहीं देता, कोई जीव का उपकार नहीं करता, उपकार और अपकार तो अपने अच्छे बुरे कर्म ही करते हैं। ये उत्थानिका वगैरह देख करके ही इसका अर्थ निकालना चाहिए गाथा, ये सिद्धांत नहीं है ना ये गाथा, ये उपदेश सूत्र है, न तो फिर वैयावृत्ति वगैरह सब समाप्त कर दोगे आप इस गाथा के भरोसे। वो चूरा से वो समझने में गलती होगी, फिर उसके नौ भंग बनाने पड़ते हैं, अभी चर्चा निकली थी कि जैसे विष की कणिका और अमृत का समुद्र, यानी अल्प विघात और बहुफल, तो ऐसे नौ भंग बनेंगे, नौ भंग में से त्याज्य जो बताया है वो अल्प फल बहुविघात को बताया है। मध्यम विघात मध्यम फल, मध्यम विघात बहु फल, ऐसे नौ भंग बन जाएंगे पूरे।
दो है
दो, अल्प और बहु और मध्यम, ये तीन है। तो अब इसमें फल और विघात को लगाते जाओ सबके साथ, नौ भंग बनेंगे। तो इन नौ भंगों में से एक त्याज्य है श्रावक के लिए, अल्प फल बहु विघात। शेष का निषेध नहीं किया है, फिर जैसा आपको समझना हो समझो। मतलब त्याज्य एक को बतला दिया तो समझ लो फिर, क्योंकि श्रावक धर्म की बात है। हाँ वो तो सही है। इसमें तो कहा ना कि अपने देव गुरु और धर्म के लिए किसी की सेना को चूर्ण कर डाले और उसको धर्म समझे तो गलत है। बोले वो कर्तव्य जरूर हो सकता है, लेकिन उसको आप इसमें जैन धर्म में मत शामिल कर लो। देव का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देव का अर्थ परमात्मा।
इसीलिए
वो तो जो व्याख्यान करने वाले को उसी समय बताया जाए कि आप जो चला रहे हैं गाड़ी वो थोड़ा सा दूसरा रास्ता पकड़ गई है,
नदी में
तो फिर वो थोड़ा सा
नदी में नहाना ये मान करके पाप धुल रहे हैं।
ये बात है, बहुत सही दृष्टांत है। मतलब ये जो इसमें ये उत्थानिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। केपी एवं वदंती, कोई ऐसा कहते हैं कि हरिहर आदि देव हमें लक्ष्मी प्रदान करते हैं, हमारा उपकार करते हैं, तो वो भी अवास्तविक है। ये अब इसके आगे गाथा पढ़ना चाहिए कि कोई लक्ष्मी नहीं देता, कोई जीव का उपकार नहीं करता, उपकार अपकार अपने भले बुरे कर्मों से होता है। तो ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत नहीं है का मतलब क्या है कि फिर माँ बेटा का उपकार नहीं करती, वो तो उसके पुण्य से हो जाता बड़ा, ऐसा मान लो। ऐसा है क्या? नहीं, ये जो उन लोगों की मान्यता है अन्य मतियों की कि नहीं हमारे लिए तो सब कुछ वहीं से होता है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं खड़कता, तो इस बात का वो निषेध कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि के अंदर ऐसी धारणा, निमित्त नैमित्तिक भाव से जो उपकार अपकार होते हैं उसका निषेध नहीं है, फिर तो भगवान की स्तुति नहीं कर सकते आप। अगर उपकार ही नहीं मानोगे भगवान को, आप ये मानोगे कि भाई उपकार अपकार तो अपने उससे होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं पहले नहीं, वो तो है ही, भगवान का स्वरूप ही वो है। गवला में तो लिखा है कि जो नहीं दे सकता वो देव नहीं है। जिनेंद्र भगवान ही जीव को उनका कल्याण प्रदान करने वाले, कल्याण के प्रदाता भगवान है। वो तो खैर है ही है, लेकिन इसमें सर्वार्थ सिद्धि में जो निकला था ना कि अनंत जीवों का अनुग्रह करने वाला जो अभयदान है, अनुग्रह शब्द था ना, देखना जरा क्षयिक भाव में, अनंत प्राणिनाम अनुग्रह करम अभयदानम क्षयिक दानम। अनंत प्राणियों का अनुग्रह कैसे हो रहा है भगवान से? वहां तो असंख्यात है समव शरण में, तो अनंत प्राणियों का उपकार कैसे हो रहा है? क्योंकि उनकी वाणी जब तक लोग सुनेंगे और जितने लोग सुनेंगे सबका भला होता रहेगा। तीसरा चौथा सूत्र अनंत प्राणीगण, बस बस में मूल में ही है। मिल गया
अत्यंत अनंत प्राणी गण अनुग्रह कर्म,
बस हो गया ना। अनुग्रह करने का मतलब क्या है कि भगवान उनका अनुग्रह करते हैं। दान दान लब्धि की बात चल रही है, मतलब भगवान दाता है, दाता एक राम जो बोलते हैं ना, तो वही है वो, बिल्कुल सच सच बात है कि भगवान ही दाता है, बिल्कुल है वो तो बिल्कुल। और पंडित जी ने उसका खंडन किया है नीचे विशेषार्थ में, वो तो आप बाद में पढ़ लेना फुर्सत से, अभी कषाय होगी फिर। तो व्यंतर देवादयो लक्ष्मादिकम वितरंती, बोले कि ठीक है हमारे वो भगवान नहीं देते, लेकिन यहाँ के जो देवी देवता व्यंतरादिक वो तो देते हैं। तो फिर बोलते हैं कि अगर व्यंतर भी भक्ति से पूजा जाने पर लक्ष्मी देने लग जाता तो फिर धर्म करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि लक्ष्मी में तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। पहला स्थान लक्ष्मी का, दूसरा स्थान धर्म का। अब इसकी टीका देखिए। अब व्यंतर देवों की, व्यंतर देव कौन से, क्षेत्रपाल, काली, चंडिका, यक्षादि लक्षण है, ये इनके नाम है। क्षेत्रपाल है व्यंतर देव, काली भी व्यंतरी है, चंडिका भी व्यंतरी है, फिर यक्ष आदि दूसरे और जो हैं वो भी व्यंतर हैं। तो इनका भक्त्या विनयोत्सवादिना पूज्यमान है, भक्ति पूर्वक या विनय पूर्वक या उत्सव आदि के साथ यदि इनकी पूजा की जाती है, अर्चित सन और पूजे जाने पर ये लक्ष्मी संपदाम ददाती यदि चेत, यदि लक्ष्मी और संपदाएं देने लग जाते तो तरही जन धर्म कथम क्रिय, फिर धर्म करने की क्या जरूरत थी बोले। तथा चोक्तम, कहा भी है, ये बहुत अच्छी अच्छा श्लोक है। तावत चंद्र बलम ततो ग्रह बलम तारा बलम भूपलम तावत सिद्ध्यति वांछितार्थम अखिलम तावत जनह सज्जनह मुद्रा मंडल मंत्र तंत्र महिमा तावत कृतम पौरुषम यावत पुण्यमिदं सदा विजयते पुण्यक्षये क्षीयते। जब तक ये पुण्य अपने पल्ले में है तब तक चंद्रबल अपने लिए हितकारी होता है। देखो चंद्रमा बलवान हो तो सबको क्यों नहीं होता फायदा, बलवान पंचमी तक का चंद्रमा बलवान माना जाता है, तो सबको फायदा नहीं होता, क्यों नहीं होता, पुण्य हो तब काम करता है। तो तावत चंद्रमा ततो ग्रह बलम, और उसके आगे देखो आप ग्रहों का जो बल है, गुरु बलवान है, लेकिन गुरु बलवान होते हुए भी सबको फायदा क्यों नहीं होता। फिर तारा बलम, ताराओं का जो बल है, भूबल भूमि का जो बल है, वो सब तब तक काम करता है जब तक अपने पास पल्ले में पुण्य हो। और तावत सिद्ध्यति वांछितार्थम अखिलम, और समस्त वांछित पदार्थों की सिद्धि तब तक होती है जब तक पुण्य है, मनोरथों की सिद्धि तब तक होती है जब तक पुण्य है। और तावत जन सज्जन, तब तक मनुष्य लोग अपने लिए सज्जन रहते हैं जब तक अपने पास पुण्य, और पुण्य जैसे ही नष्ट हुआ तो वही दुर्जन बन जाता है अपने प्रति। मुद्रा, ये मुद्राएं भी तब तक काम करती है जब तक पुण्य है। मंडल, मांडना बना बना करके कई प्रकार के अपन आराधनाएं करते हैं, वो भी पुण्य के योग में काम करती हैं। मंत्र तंत्र, इनकी भी महिमा तब तक है जब तक पुण्य पल्ले में है। और तावत कृतम पौरुषम, तब तक किया हुआ पौरुष सफल होता है जब तक पुण्य विजयते दिया ना। पुण्य क्षय क्षीयते, पुण्य नष्ट हो जाने पर ये सब नष्ट हो जाते। लेकिन इसमें भी वो दोनों बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ उस बात को निकाल रहे हैं दिमाग से कि तुम उनके आश्रित मत रहो।
इस समय सुनने वाला श्रोता कैसा है,
यहाँ उस धारा में सही जाना चाहिए उसको, भटकना नहीं चाहिए धारा से, नहीं तो आप इन चीजों को व्यर्थ समझ लो तो काम बिगड़ जाएगा। ये चीजें व्यर्थ नहीं है, मुद्रा है, मंडल है, मंत्र तंत्र, इनकी महिमा निरर्थक तो है नहीं। वो कर्मवादी हो गए ना, वो अन्यमती बन गए, अन्यमती बन गए वो। वो तो जरूरी है।
दोनों बात के जैसे यक्षिणी आदि का इसके श्लोक में आया, तो किस हिसाब से पूछ रहे हैं उसकी महिमा इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को निषेध करना पड़ा। लेकिन
वो
क्यों करना पड़ा,
मतलब वो देव मूर्ता की श्रेणी में चले गए।
चले गए इसलिए मना करना पड़ा
कि मतलब वरोपलिप्स से आशावान, वरदान की उपलिप्सा और आशाएं हो गई उनको कि इन शासन देवताओं से हमारी आशाएं मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, ये स्थिति बन गई।
भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे, आके उनको देसी हूँ, झोल की सलाम देसी हूँ, इधर आधे घंटे रख लीजिए। लेकिन समझना जरूरी है,
क्योंकि अब इसमें अगर पुण्य का अपन एकांत कर लो तो फिर अस्पताल और वैयावृत्ति बेकार है,
सब बेकार है।
क्योंकि पुण्य के उदय से ठीक होना ही है, बाकी कोई चीज ठीक, जब ये ठीक नहीं कर सकते तो और कौन ठीक कर सकता है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बाधा तो ये आ जाएगी, वो सूत्र फेल हो जाए। अब इसको पढ़ने से क्या होता है कि एक धुन आ जाती है दिमाग में और फिर बस वो सब चीजें बेकार लगने लगती है। और जबकि राजवार्तिक में बताया कि ये देवता लौकिक शरण है, राजा लोग लौकिक शरण है, वो मतलब लोगों की संकटों को दूर करने वाले लोग होते। लेकिन यहाँ पर तो लक्ष्मी आदि के लोभ का निषेध कर रहे हैं मुख्य रूप से।
नहीं,
बाकी पहले जो शब्द बोले थे उनने, वो उन शब्दों को अभी कोई भूल नहीं सकता, इतना भयंकर शब्द बोले थे उनने 96 में, तो अभी 9 साल तक के उसको कोई भूला नहीं, इतने भयंकर शब्द थे उनके।
नहीं,
फिर जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता गया, तिलोय पंडित आदि ग्रंथों का उनने देखा, अवलोकन किया, तो अब क्या है कि तिलोय पंडित में ऐसा भी उल्लेख है कि जिनेंद्र भगवान की स्थापना जो होती है वो स्थापना, मतलब अकृत्रिम चैतन्यों का वर्णन उसमें किया, त्रिलोकसार ग्रंथ में उसका वर्णन है, तो उसमें साथ में ये देवी देवताओं का भी लिखा हुआ है। अभी इसमें कौन से में था, त्रिलोकसार की 988 नंबर की गाथा है और तिलोय पंडित की, और तिलोय पंडित की भी एक गाथा है 1991 नंबर की जो गाथा है। इन दोनों गाथाओं में बताया है कि जिनेंद्र भगवान की जहाँ भी स्थापना है वहाँ साथ में दो यक्ष हैं और दो देवियाँ हैं। दो यक्ष कौन से, सनत कुमार और सर्वाण यक्ष हैं, और दो देवियाँ कौन सी हैं, एक तो श्रुत देवी और दूसरी श्री देवी। श्रुत देवी यानी जिनवाणी और दूसरी श्री देवी यानी लक्ष्मी, ऐसा उसमें उल्लेख किया। तब उसमें क्या है कि और सारी बातें समझ करके फिर उसका कोई करना चाहिए आगे कुछ कथन।
नहीं, जैसे समय सारणी का स्वाध्याय समय सारणी को नहीं करना चाहिए, एक जिस को प्रश्न की तरह आचार्य महाराज के विषय, लेकिन व्याख्या नहीं समझ रहे समय सारणी विषय करते हैं श्राम ग्रस्त के लिए। बस इतने शब्दों को प्रचारित किया है, आना पीछे नहीं किया है, वैसे यहाँ प्रसन्न होता है कि आने पीछे सोच करके किस लिए किस व्यक्ति को समय सार पढ़ने की मना किया होगा, उससे व्यक्ति स्वच्छंद ना हो जाए, किसी ये इनको पढ़ करके स्वच्छंद हो गया।
नहीं, क्या है कि मंद बुद्धियों के लिए है ही नहीं ये सब बात है। क्योंकि मंद बुद्धि लोग क्या होते हैं कि आधा सुनते हैं और आधा समझते हैं उसमें से, और फिर बताते कुछ और ही है, तो सब काम बिगड़ जाता है उसमें। सिद्धांत और आचार ग्रंथ मंद बुद्धियों के सामने नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा लिखा है इंद्रानंद नीति सार में। नियतम, अब आगे की जो गाथा है, अथ सम्यक दृष्टि एवं वक्षमाण लक्षणम विचारयति इति गाथा त्रयीणा, तीन गाथाओं के द्वारा बताते हैं कि सम्यक दृष्टि ऐसा विचार रखता है, ऐसा चिंतन करता है। अब इन दो गाथाओं को लेकर तो बिल्कुल एक अलग ही धारा चल रही है, और पंडित जी ने इसमें जो अर्थ किया है एक खास चीज देखने की, मूल से विपरीत अर्थ किया है। देखना ये इस गाथा के टीका में जो अर्थ था ना, जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेन्द्र कौन टाल सकने में समर्थ है। अब यहाँ नीचे देखना, सम्यक दृष्टि ये जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र और भाव नियत है। अब ये जो वाक्य लिखा है उन्होंने पेज नंबर 228 के पांचवें वाक्य को देखिए। अब किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नियत नहीं हुआ, बल्कि नियत होने से ही उन्होंने उन्हें उस रूप में जाना है। ये पंडित जी ने अपने मन से किया है, ये मूल में नहीं है। ये एक चैलेंजिंग चीज है, किसी से भी पूछ लो आप कि ये अर्थ कहाँ निकल रहा है इसकी मूल में, निकाल के बताओ आप, फेल है सब। और जो गाथा का अर्थ किया था वो एकदम सही था। देखो आप गाथा का अर्थ क्या किया, जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, जिन देव ने नियत रूप से जाना है,
नियत इसलिए नहीं जाना है।
हाँ कितना फर्क पड़ गया दोनों में,
नियत है इसलिए नहीं जाना।
ये तो इन्होंने क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने के लिए ये सब बातें लिखी है नीचे। कितना लंबा लिख दिया बताओ, टीका उतनी है नहीं इतनी लंबी जितना उन्होंने विस्तार कर दिया पंडित जी ने। ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि संपत्ति में हर्ष और विपत्ति में विषाद नहीं करता, क्या बकवास है। सम्यक दृष्टि संपत्ति में हर्ष और विपत्ति में विषाद नहीं करता तो सीता रोई क्यों थी, सीता क्यों रोई थी और राम क्यों बिलखे थे, रावण से क्यों लड़ने गए भाई। अगर हर्ष विषाद ही नहीं था, समता भाव था, तो फिर ठीक है बैठ जाते ध्यान में, नमो हरि नमो रिंदा क्या नमो अपाणम तो ये ऐसी गड़बड़ियां होती है। मतलब
हमारा की अब एक इस पे ये वाली बात, अब जैसे इसको पढ़ने में निषेध कर दिया जाए, ठीक है, अभी वाली एक बात निकलता है कि आकाश से प्रकाशित, ये एक शब्द बता लूं उदाहरण के लिए, आकाश से प्रकाशित या समुद्र से प्रकाशित ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसको वर्ण रखा कर रहे आदमी,
जिनवाणी का विरोध कर रहे हैं लोग, ये सिर्फ लोगों के इमोशनल मतलब भावना को ठेस पहुंचाने के लिए,
हमारी बात को भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। हम क्या कहेंगे, अज्ञानी जीव इस चीज को नहीं पकड़ सकता, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। या अज्ञानी तो छोड़ो, बहुत सामान्य बुद्धि का ज्ञानी जीव भी, मध्यम ज्ञानी, ज्ञानियों की श्रेणी बना दी जाए, मध्यम ज्ञानी जीव,
हाँ औसत बुद्धि के,
औसत बुद्धि का ज्ञानी उनके गलतियों को
नहीं पकड़ सकता।
तो बस हमने इस तर्क को लेकर वाली बात कही, लेकिन ये वाली बात नहीं कही जाए, ये कहेंगे तो जुर्माने कहेंगे, आकाश से प्रकाश से सुनना से प्रकाश सब पहुंचे, तो बताओ कौन में क्या खराबी, पूरे अपन को बता देगा,
कौन बता देगा, कौन बता ही नहीं सकता कोई।
वो एक लाइन तो नहीं थी,
वो खुद भूल जाता ना पहले क्या पढ़ा था नहीं क्लियर। आप देखो ना उसके मूल गाथा का अर्थ देख लो और फिर टीका में अर्थ देख लो, खुद उनकी बात विरुद्ध हो रही है।
शांति को प्रकाशन में पंडित जी ने कह दिया, किसी की निन्यानवे बातें सही हो और एक बात गलत हो, उसकी सही निन्यानवे मानने योग्य नहीं, क्योंकि उसने उस निन्यानवे सही इसलिए की गई उसको एक जी मनवाना था, उसने पूरे ग्रंथ की रचना इसी नहीं करी है,
क्या बात,
उसको ये लाइन समझाना थी।
बहुत बढ़िया, क्या गजब की युक्ति लगी।
जीवन शांति पर प्रदर्शन में हो जाती, कोई की निन्यानवे बातें सही हो और एक गलत है, उसकी सही निन्यानवे मत मानो। तो उसने महाराज जी और उसमें दिया डेल काटने की मेरा, यदि किसी को यस करवाना है आपको, गलत चीज पे यस करवाना है, उसे यस 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 निन्यानवे बार करवाओ, जैसे बच्चे खेलते ना बड़ा बड़ा
बिल्कुल सही बात।
पूरे ग्रंथ की रचना करते हैं इस पृष्ठ को पढ़वाने के।
इसका नाम है अनंतानुबंधी माया, बस। माने देव शास्त्र गुरु में छल करना, ये अनंतानुबंधी माया है।
सामान औसत में क्यों रहते नहीं पकड़ते?
क्योंकि ऊपर जब संस्कृत में इन्हें सब जगह तो टीकाएं आधी कर दी, पूरे लाइनों के अर्थ भी नहीं लिखे, और इस इन दो गाथाओं में इतना बड़ा पूरा पेज भर दिया इन्हें। क्या मतलब? मतलब वो कोई अपनी बात पुष्ट करना चाहते थे। और भाषा लच्छेदार होती है, उनकी भाषा बहुत, आप देखेंगे कि ऐसे विद्वानों की जो भाषा रहती है अट्रैक्टिव होती है। आदि पुराण को भी मिथ्या ग्रंथ मानने लग गए। अब मतलब तीन बड़े बड़े जो सबसे बड़े पुराण हैं जैन आगम के, वो तीनों अमान्य हो गए। पद्म पुराण तो था ही अमान्य, फिर हरिवंश पुराण को भी अमान्य कर दिया और आदि पुराण को भी अमान्य कर दिया।
आपको ये बताएं, पूरे 365 दिन स्वाध्याय करें और एक दिन स्वाध्याय में ये चीज निकल जाए तो इसको जाना।
वो बोलेगा कि जिनवाणी में आया है वो, तो मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकता, मैंने तो जिनवाणी में खुद अपने आंखों से स्वाध्याय किया। मैंने स्वाध्याय को मैं गलत मानूं या तुम्हें, तुम जो कह रहे हो उसको गलत मानूं, तुम जिसका निषेध कर रहे हो उसको गलत मानूं? इसका लेकिन इनने भारी खंडन किया। मोतीचंद कोठारी जी ने क्रमबद्ध पर्याय समीक्षा में, और इन्होंने हेमंत काला ने इसमें जबरदस्त किया। इस वाक्य को ले लिया ने। और जरूरी है, मतलब समाधान भी होना चाहिए सब प्रकार के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा रे तुम्हें।